ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 41। यत् अर्थ इह कर्मणि विद्वत् मानि असकृत् करोति अतः अमोघं विन्दते फलं। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन् मान्य सकृत् नर करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन् मान्य सकृत् नर करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन् मान्य सकृत् नर करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। सम यत जिसके अर्थ लिए इह इस भौतिक जगत में कर्माणि अनेक कार्य फैक्ट्रियों उद्योगों चिंतन आदि में विद्वत ज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानी मानने वाला असकृत पुनः पुनः नर पुरुष करोति करता है अतः इससे विपर्यासम विपरीत अमोघम ध्रुव विन्दते प्राप्त करता है फलम फल। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर विकास के लिए कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा पुनः पुनः विफल होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी आशा से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनवांछित फल नहीं प्राप्त हो सका, उल्टे वह पुनः पुनः निराश होता रहा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस जीवन में और न अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाए। अनेक राष्ट्रवादियों अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख के लिए प्रयत्न किए हैं, किंतु इतिहास से यह प्रकट है कि वे सब निराश हुए हैं। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेकानेक राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास के लिए कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे हैं। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का प्रतिदिवसीय श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है। इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण हम प्रतिदिन यहाँ पर करते हैं और इस भागवत के सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय की कथा यहाँ पर चल रही है। इस अध्याय में भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश के क्रम में उन्होंने बताया कि हे मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में और किसी से प्रेम न करके भगवान विष्णु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही प्रेम करने के लिए योग्य है और भगवान को प्रेम करने में किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने पहले इस उपदेश के प्रारंभ में इस संसार के लोगों के बारे में बताया। संसार के लोगों को प्रसन्न करना हो तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति संसार के लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ये कहते हैं कुटुंब पोषाय वियन निजायु। एक व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए अपनी निज आयु, अपनी समस्त आयु बिता देता है, परंतु फिर भी पत्नी और बच्चे उस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना हो तो बहुत थोड़े से कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, को अति प्रयासो असुर बाल का हरे उपासते स्वे रिधि छिद्र वत्सत। भगवान को प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं है। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शशि गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, भगवान को प्राप्त करने में क्यों प्रयास कम करना पड़ता है या प्रयास नहीं करना पड़ता है? आप एक छोटे से दृष्टांत से समझिए। यदि आपको किसी नेता से मिलना हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो, तो उस बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। पहले अपनी पहचान लगानी होती है, फिर उसके सीए से मिलना पड़ता है, असिस्टेंट से मिलना पड़ता है, और तब जाकर बहुत मेहनत के बाद आप किसी नेता से मिल सकते हो, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि भगवान हम सबके निकट है। हमसे सबसे निकट यदि कोई है तो वो है भगवान विष्णु, जो बिल्कुल आत्मा के निकट, आत्मा के बिल्कुल बाजू में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। आत्मा के सबसे निकट परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने में को अति प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत निकट होने के कारण बहुत आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का प्रयास भगवान विष्णु से प्रेम करना चाहिए। कते राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतय। कते ये धन पुत्र परिजन स्वजन ये सब कहां तक साथ देंगे? ये सब नाशवंत है, इस संसार में क्षणिक कुछ समय के लिए मिलते हैं, ये शाश्वत काल तक हमारे साथ नहीं रहते हैं। और उसी प्रकार कहते हैं एवं ही लोका कर्तुभि कृता अपि, जिस प्रकार पत्नी पुत्र स्वजन और धन क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, उसी प्रकार एवं ही लोका, उसी प्रकार बड़े बड़े यज्ञ करके उच्च लोकों को अर्थात स्वर्ग लोकों को जो प्राप्त करते हैं, ये स्वर्ग लोक भी क्षणिक समय के लिए हमें मिलते हैं। जिस प्रकार से धन पुत्र परिजन ये बहुत कम समय तक हमारा साथ देते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग इत्यादि लोग भी बहुत कम समय तक हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, यद्यपि यह स्वर्ग लोक विशाल है, एरिया की दृष्टि से विशाल है, सुख की दृष्टि से विशाल है, उम्र की दृष्टि से विशाल है, परंतु क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, परंतु स्वर्ग लोक से भी व्यक्ति को यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो जैसे पुत्र कलत्र आदि क्षण भंगुर है, क्षणिक है, उसी प्रकार स्वर्ग भी शाश्वत काल तक हमारे साथ नहीं रहता है। तो अंत में प्रहलाद महाराज कहते हैं व्यक्त्योक्त येषम भजतात्म लब्धिये, अतः हे मेरे प्रिय मित्रों, भगवान से विष्णु का भजन करना चाहिए, भगवान से विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इतना कह के आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। इस आज के श्लोक में भगवत भजन अतिरिक्त कर्म गतिम आह, अगले श्लोक में कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परंतु इस श्लोक में कहते हैं भगवत भजन अतिरिक्त, भगवान विष्णु के या कृष्ण के भक्ति से अतिरिक्त यदि आप कार्य करते हो, भगवान की भक्ति से अतिरिक्त यदि कार्य करते हो, तो इस श्लोक में जो सार है, यह श्लोक में जो लिखा है, ऐसा फल प्राप्त होता है। कहते हैं भगवत अन अर्पण बुद्धि अनुष्ठित यज्ञ आदि कर्म अनर्थ हेतु इति आशयन आह। अगले पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति करना यही जीवन का सार है, और भगवान विष्णु की भक्ति न करके हमारे मन और बुद्धि भगवान विष्णु में न लगाकर कहते हैं अन्य अन्य योग तपस्या यज्ञ करते हो, तो ये योग तपस्या यज्ञ अनर्थ हेतु, केवल अनर्थ का ही कारण बनते हैं। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाए उससे केवल अनर्थ ही मिलते हैं, यह बात इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो इस श्लोक का प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज, यत अर्थ, कहते हैं यत अर्थ, यत अर्थ का अर्थ होता है जिस उद्देश्य से। तो प्रश्न होता है किस उद्देश्य से, यत अर्थ जिस उद्देश्य से, कहते हैं यद अर्थे यस्य वैषयिक सुखस्य अर्थे, जिस उद्देश्य से अर्थात किस उद्देश्य से, कहते हैं वैषयिक सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में लोग, वैषयिक सुख का अर्थ होता है हमारे पास कान त्वचा जिह्वा नाक और आंख, ये सब इंद्रिया है, और इस इंद्रिय के कुछ विषय होते हैं शब्द स्पर्श गंध रस इत्यादि। तो इस विषय भोगों को, इसे विषय कहा जाता है। इस संसार में जो लोग भजन नहीं करते हैं वे विषय, विषय को प्राप्त करना चाहते हैं और इस विषयों में सुख ढूंढते हैं। तो यत अर्थ, जिस जो लोग विषय में फंसे हुए हैं और विषय, विषय सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से, इह, इह माने इस संसार में, इस लोक में, विषयी सुख प्राप्त करने के लिए इस लोक में विद्वन मानी, जो अपने आप को विद्वान मानता है, विद्वन मानी का अर्थ होता है, वीर राघव जी कहते हैं विद्वन मानी केवल कर्म मीमांसा उपचित बुद्धिर इति अर्थ, विद्वान मानी का अर्थ होता है जो केवल कर्म मीमांसा, जो केवल कर्म में पड़ा रहता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म को ही अपनी भक्ति मानता है। जैसे आपने कई दुकानों में, कई ऑफिसों में लगाया जाता है, कर्म ही पूजा है, ग्राहक हमारे भगवान है, ग्राहकों को संतुष्ट करना ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं, ऐसे लोगों को यहां पर विद्वान कहा गया है। विद्वान मानी, जो लोग केवल कर्म में ही पड़े रहते हैं, केवल कर्म करने में ही लगे रहते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं, तो ऐसे कर्म करने वाले लोग कहते हैं, यद अर्थ विषयी सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में विद्वान मानी केवल कर्म में 24 घंटा केवल कर्म में रहने वाले नर मनुष्य। एक आचार्य अपनी टीका में बहुत सुंदर लिखते हैं कि नर माने केवल मनुष्य ही नहीं, नर प्राणी एव। प्रहलाद महाराज का यह उपदेश केवल मनुष्य को ही लागू नहीं होता है, प्राणी मात्र, सभी प्राणी विषयी सुख प्राप्त करने की मेहनत में लगे रहते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली सुकर इत्यादि सब लोग विषयी सुख प्राप्त करने के लिए 24 घंटा मेहनत करते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज का यह उपदेश किसी मनुष्य के लिए है, परंतु प्राणियों के लिए भी यह उपदेश समझा जा सकता है कि नर कहते हैं, यदर्थ विषयी सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में बड़े बड़े विद्वान जो केवल कर्म मार्ग को स्वीकार किए हैं, ऐसे नर सकृत कर्माणी अपने सभी कर्मों को, उनके कर्म कैसे होते हैं, कहते हैं उनके कर्म कर्माणी लौकिक और वैदिकानी। वे लोग लौकिक कर्म भी करते हैं और वैदिक कर्म भी करते हैं। लौकिक कर्म कैसे होते हैं, कहते हैं कृषि वाणिज्य आदि भी। संसार के लोग विषयी सुख प्राप्त करने के लिए कुछ लौकिक कर्म करते हैं, और लौकिक कर्म क्या है, कृषि खेती इत्यादि करते हैं, वाणिज्य इत्यादि अर्थात व्यापार इत्यादि करते हैं। संसार के लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या खेती करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं विषयी सुख प्राप्त करूं। ये सभी मेहनत, सभी कर्म, सभी कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य, सुख प्राप्त हो, और सुखी होने के लिए कृषि वाणिज्य इत्यादि भी यह करते रहते हैं, और साथ ही साथ वैदिक कर्म भी करते हैं। वैदिक कर्म कैसे करते हैं, याग दान आदि भी च करोति, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, परंतु यह यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है, यह यज्ञ का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति करना होता है, यज्ञ का उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना होता है। संसार में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति नया फ्लैट या घर खरीदता है तो उसमें वास्तु यज्ञ कराते हैं, तो वह यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यद्यपि सारे यज्ञ विष्णु के ही होते हैं, यज्ञ के भोक्ता भगवान विष्णु है, परंतु उस यजमान का उद्देश्य सुख शांति प्राप्त करना होता है। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दान का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना नहीं, दान का उद्देश्य यही है कि हम दान करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा जिससे हम स्वर्ग में जाएंगे। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय सुख के लिए संसार में कुछ लोग वैदिक कर्म भी करते हैं, वैदिक कर्म अर्थात यज्ञ दान इत्यादि, परंतु यह कितने भी वैदिक कर्म करे, कितने भी लौकिक कर्म, कितना भी बड़ा बिजनेस करे, करोड़पति अरबपति बन जाए, प्रहलाद महाराज कहते हैं अमोघम विपर्यसाम फलम विंदते। व्यक्ति विषयी सुख प्राप्त करने के लिए कितना भी मेहनत करे, कितना भी प्रयास करे, परंतु इस विषयी सुख प्राप्त करने में जो भौतिक प्रयास है, उस भौतिक प्रयास का फल बिल्कुल विफल ही मिलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को केवल दुख ही मिलेगा। कहते अमोघम निश्चित, अमोघम का अर्थ होता है अमोघम अवश्यम विंदते। कहते हैं कोई व्यक्ति सुखी होने के लिए कितना भी प्रयास क्यों न करे, अमोघम निश्चित ही उसे सुख नहीं दुख ही मिलेगा। सुख प्राप्त पहले ही कह चुके हैं, यद अर्थ विषयी सुख प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्म करते हैं, यज्ञ दान करते हैं, और इसी विषय सुख प्राप्त करने के लिए कृषि वाणिज्य अर्थात व्यापार बिजनेस करते हैं। कितना भी बिजनेस करे, कितना भी वैदिक कर्म करे, यज्ञ दान इत्यादि, परंतु फिर भी अमोघम निश्चित ही उसे उसका विपरीत फल ही मिलता है, अर्थात उसे दुख ही मिलता है। सुखी होने के लिए जो भी इस संसार में भौतिक प्रयास करता है, उस भौतिक प्रयास के द्वारा दुख ही मिलते हैं। अमोघम सदा अनत्वेन अवध्यम। अमोघम शब्द से प्रहलाद महाराज इस बात को दृढ़ कर रहे हैं कि कितना भी प्रयास, अनलिमिटेड प्रयास करे व्यक्ति सुखी होने का, परंतु व्यक्ति को दुख ही मिलेगा। कभी किसी व्यक्ति को लगता है ठीक है दुख न मिले, परंतु न्यूट्रल अवस्था तो मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत किया तो दुख ही मिलेगा। विपर्यम फलम विंदते, कहते हैं फल जो है बिल्कुल विपरीत मिलेगा। विपर्यम कार्य किया है सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं विपर्यम उनका फल कैसा होगा, विपरीत होगा। विपर्यसम विपरीतम दुखात्मक एवं फलम। विपर्य का अर्थ होता है दुख, केवल दुख ही मिलेगा। इस बात को वंशीधर जी बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ समझाते हैं। वंशीधर जी अपनी टीका में लिखते हैं यथा सुख अर्थम। संसार में कुछ लोग सुख प्राप्त करने के लिए कृत स्त्री संग, इस संसार में कुछ लोग सुख प्राप्त करने के लिए स्त्री संग करते हैं, विवाह करते हैं, और विवाह करने के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि बिना पैसे के विवाह नहीं हो सकता है, और बिना घर के विवाह करके पत्नी को कहां रखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति विवाह करने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, और उस परिश्रम में उसे दुख ही मिलता है। और परिश्रम करने के बाद, विवाह करने के बाद वंशीधर जी लिखते हैं कि यथा सुख अर्थम स्त्री संग। कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्त्री संग करता है, परंतु पुत्र आदिन उतु एव स्यात् इति भाव। इस श्लोक का भाव यही है कि विवाह करने के बाद उसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, और पुत्र उत्पन्न होने के बाद संसार में देखा गया है, अनुभव किया गया है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख उस पत्नी और पुत्र के द्वारा ही मिलता है। कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए विवाह किया था, परंतु विवाह करने के बाद जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या बनता है, पत्नी और पुत्र। इस दृष्टांत के द्वारा इस संसार को समझाते हैं, भगवान की भक्ति को छोड़कर भौतिक सुख विषयी सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितनी भी मेहनत करता है तो उसे विपरीत फल ही मिलता है, उसे दुख ही मिलता है। इसलिए भौतिक प्रयास न करके आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो है विद्वत मानी। बाल प्रबोधि में, प्रबोधिनी नामक टीका में गोस्वामी गिरधर लाल बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। कहते ननु कथम एवं कारणे प्रवर्तने। कहते संसार के लोग विषयी भोग में क्यों फंस जाते हैं। सब लोग माँ के घर में गर्भ में होते हैं। भगवान कपिल देव भागवत के तृतीय स्कंद में इस बात को कहते हैं, और भक्तिनाथ ठाकुर भी अपने भजन में कहते हैं कि सभी लोग भगवान से प्रार्थना करके आए हैं कि हम इस जगत में आएंगे और आपका भजन करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं बाल प्रभु ने टीका में, ननु कथम एवं कारणे प्रवर्तने। ऐसे विषयी सुख में, विषयी भोग में व्यक्ति क्यों फंस जाता है। तो इसका उत्तर देते हैं कि इति चेत अविद्या मोहात। व्यक्ति विषयी सुख में इसलिए फंसता है क्योंकि अविद्या और मोह उसमें आ जाता है। अविद्या के कारण और मोह के कारण व्यक्ति विषयी सुख में फंस जाता है। तरही तत्वज्ञ प्रबोधित कुतो न निवर्तते, परंतु वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तत्वज्ञ हो, तत्व को जानने वाला हो, तो तत्व को जानने वाला व्यक्ति इससे निवर्तित नहीं हो पाएगा, इससे मुक्त नहीं होगा। तत्व को जानने वाला व्यक्ति विषयी सुख प्राप्त करने से निवर्तते अर्थात मुक्त नहीं हो पाएगा। तो कहते नहीं, क्यों? क्योंकि विद्वत मानी, इस संसार में जो बड़े बड़े तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी भी विषयी सुख में इसलिए फंसे हैं क्योंकि अपने आप को विद्वत मानी, अपने आप को विद्वान मानते हैं। देखा गया है इस संसार में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान भी भौतिक सुख विषयी सुख में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को विद्वत मानी, अपने आप को विद्वान मानते हैं। कहते हैं अनात्मम विद्वांसम मन्यमानो अत न तत्व उपदेशम शुणोति। इस संसार में लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं इसलिए न शुणोसि किसी के मुख से उपदेश श्रवण नहीं करते। मान लीजिए किसी के प्रवचन में भी बैठ जाए परंतु उसके मुख से उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और जीवन में लागू नहीं करेंगे। विद्वत मानी, संसार में व्यक्ति को सब कुछ बनना चाहिए परंतु अपने आप को कभी विद्वान नहीं मानना चाहिए। क्योंकि विद्वत मानी, विद्वत विद्वान मानने वाला व्यक्ति न सुनोसी कभी भी किसी की बात को नहीं सुन सकता। पहले तो किसी के प्रवचन में ही नहीं जाएगा, किसी के मुख से सुनेगा ही नहीं, और सुनने के लिए बैठ भी गया फिर भी उसकी बात स्वीकार नहीं करेगा। तो यहां पर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विद्वत मानी। बड़े बड़े तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले भी भौतिक सुख इंद्रिय सुख में इसलिए फंसे हैं क्योंकि अपने आप को विद्वान मानते हैं। नवास ते रूप दिश्यते अभिमान पुंसजवात इति भाव। इस श्लोक का एक भाव यह भी है कि जिसके हृदय में अभिमान है और अभिमान के द्वारा अपने आप को ज्ञानी और विद्वान मानता है वे कभी किसी से नहीं सुनेगा। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। हे अर्जुन, मत चित, यदि तुम मेरे चित वाले हो जाते हो अर्थात अपने चित में मेरा मनन करते हो, मेरा ध्यान करते हो, मेरा भजन करते हो, तो सर्व दुर्गाणी सभी बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरा भजन करने से, मेरी कथा सुनने से मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से तुम तर जाओगे। यह सत्य है, भगवान की कथा सुनते हैं, उनका भजन करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है, उनकी कृपा से हम तर जाते हैं और सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान एक सुंदर बात कहते हैं, अथ चेत अहंकारात न शोष्यसि विनश्यति। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मेरी कृपा से यदि आप लोग मेरी कथा का श्रवण करोगे तो मेरी कृपा से इस बंधनों से मुक्त हो जाओगे। परंतु बट, लेकिन अथ चेत अहंकारात, लेकिन हृदय में अहंकार है तो न शोष्यसि, कभी मेरी कथा श्रवण कर ही नहीं पाओगे। हृदय में अहंकार रखने वाला व्यक्ति सुनते हुए भी कभी नहीं सुनेगा। और ऐसा व्यक्ति न शोष्यसि विनश्यसि, ऐसे व्यक्ति का विनाश निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए हृदय में अहंकार से मुक्त होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। और इस अहंकार से यदि मुक्त होना है तो हृदय में अहंकार और अपने आप को विद्वान नहीं मानना चाहिए। देखिए, हम गुरु पूजा यहां पर प्रभुपाद जी की गाते हैं तब कहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु। गुरु जी करुणा के सागर है, अधम जनार बंधु, अधमों के बंधु है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु करुणा के सागर है, गुरु करुणा देने के लिए ही बैठे हैं, परंतु किसके ऊपर करुणा करते हैं? अधम जनों के ऊपर। वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा, वरिष्ठों की कृपा अधम लोगों के ऊपर होती है। अधम माने जो अपने आप को नीच समझता है, अपने आप को नीचा मानता है, जो नम्र होकर झुके रहकर गुरु के सामने, भगवान के सामने, वरिष्ठों के सामने पेश आता है, उनके ऊपर कृपा होती है। विद्वत मानी अपने आप को बड़े मानने वालों के ऊपर कृपा कभी नहीं आती। ये कृपा का स्वभाव, एक आचार्य कहते हैं, कृपा का स्वभाव पानी की तरह होता है। जैसे आप पानी को छोड़ते हो तो पानी नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार कृपा जो है नीचे की ओर जाती है, जो झुक कर बैठा है, जो अपने आप को नम्र समझता है, अपने आप को अधम और मूढ़ मानता है, ऐसे लोगों के ऊपर वरिष्ठों की कृपा होती। आप देखिए इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने वरिष्ठ भक्तों के सामने जिज्ञासा की और वरिष्ठ भक्तों से मिले तो अपने आप को मूढ़ ही पेश किए। नहीं तो सनातन गोस्वामी क्या कम विद्वान थे? इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु के सामने कहते हैं कि आमी केने आमाए जारता पत्रई, हे प्रभु मैं कौन हूं? इतने बड़े व्यक्ति भी, क्योंकि जब हम अपने आप को मूढ़ समझते हैं तभी कृपा मिलती। रामायण में भी यह बात आती है, भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जब जिज्ञासा करते हैं तो कहते हैं आप भगवान राम के बारे में सुनाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान राम जो दशरथ के पुत्र हैं और अपनी पत्नी के विरह में वन वन में भटकते हैं, क्या वे ही वास्तव में भगवान है? जब यह जिज्ञासा हो गई तब वे कहते हैं कि वास्तव में आप तो राम के बारे में जानते हो परंतु फिर भी मूढ़ बनकर मेरे सामने जिज्ञासा करते हो क्योंकि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। वहां पर यह मूढ़ शब्द आया है। अपने आप को मूढ़ समझ कर जिज्ञासा कर रहे हो इसलिए निश्चित मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। मूढ़ बनकर अर्जुन भी भगवान से जब जिज्ञासा करते हैं तो बिल्कुल नम्र होकर। ज्ञान प्राप्त करना है, श्रवण करना है तो अपने आप को झुक कर रखना चाहिए। यदि झुक कर नहीं रखेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विद्वत मान, विद्वान मानने वाला, अपने आप को विद्वान मानने वाला व्यक्ति न सुनोती कहते हैं कभी सुन नहीं सकता है। एक रामायण की घटना याद आ रही है, जब भगवान श्री रामचंद्र ने एक साथ 31 बाण मार के रावण का वध किया और रावण जब भूमि पर गिरा तो भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण रावण जो है बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने जीवन में भले कुछ गलत काम किए हैं परंतु उनके पास ज्ञान बहुत है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाओ। लक्ष्मण तो मुंह बिगाड़ने लगे, प्रभु आप किससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हो? जिन्होंने मेरी भाभी का अपहरण किया है उससे ज्ञान प्राप्त करूंगा? ऐसे खल असुर से ज्ञान प्राप्त करूंगा? भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है। अब बड़े भाई की आज्ञा, लखनलाल तो गए। जैसे ही लखनलाल रावण के पास गए, रावण के पास जाकर खड़े रहे, रावण ने अपना मुख फेर लिया। लखनलाल दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु प्रभु, वह रावण मर गया है, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया, अभी भी उसके हृदय में अहंकार है, अभिमान है। जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया, उसने मुझे ज्ञान ही नहीं दिया। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, लक्ष्मण तुम जब रावण के पास गए तो कैसे गए, किस प्रकार गए? प्रभु चलकर गया नहीं, किस मुद्रा में, किस भाव से गए? तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं रावण के पास गया तो उसके सिर के पास खड़ा रहा और कहा ज्ञान दो। तब भगवान ने कहा देखो ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता है, तुम जाओ रावण चरण के पास खड़े रहना, रावण के चरण के पास खड़े रहकर हाथ जोड़कर तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता में भगवान कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब नम्र होकर गुरु के पास जाएंगे तब उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिन, तब वे ज्ञान प्रदान करें। और फिर जब भगवान ने कहा तब लखनलाल गए और हाथ जोड़कर रावण के चरणों के पास बैठे और नम्र होकर कहे कि प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए, और रावण ने अंतिम घड़ी में लक्ष्मण को ज्ञान दिया। ज्ञान दिया वो तो अलग टॉपिक है, परंतु विद्वत मानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में उसे धारण करने के लिए हृदय कोमल होना चाहिए और अपने आप को नीच से भी नीच, अधम से भी अधम समझकर कहीं भी किसी के मुख से प्रवचन सुनने के लिए बैठना चाहिए। और जब तक न सुनोती, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक यह भाव हृदय से कभी नहीं जाने जाएगा। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले मैं एक आचार्य से एक बात को सुना, हृदय को स्पर्श हो गई यह बात। मैंने उसे एक ही प्रश्न पूछा कि प्रभु मैं भागवत पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, परंतु फिर भी हृदय इतना कठोर क्यों है? हृदय में किसी भी प्रकार का भाव नहीं, विकार नहीं। तब उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि देखो, पढ़ने से भाव नहीं आता है, पढ़ने से केवल ज्ञान मिलता है, विज्ञान तो सुनने से मिलता है। ये जो भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, ये किसी के मुख से सुनने से मिलता है। तब उन्होंने मुझे कहा, प्रभुपाद जी का यह भागवत निकालो, यह तात्पर्य पढ़ो, यह निकालो, यह तात्पर्य। उनको पेज नंबर भी याद थे और वास्तव में कन्विंस हो गया, प्रभुपाद जी ने जगह जगह पर लिखा है। और एक श्लोक में आया है कि जब कोई शुद्ध भक्त के मुख से हम भगवान की कथा सुनते हैं तो शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए शब्द भगवान के चरण कमलों की रज से, भगवान के चरण कमलों की केसर रूपी पराग से स्पर्श होकर वह शब्द हमारे कान के द्वारा डायरेक्ट हृदय में उतरते हैं। किसी शुद्ध भक्त के मुख से हम कथा सुनते हैं तो वह कथा डायरेक्ट हृदय में जाती है, क्योंकि वह जो शब्द होते हैं, वर्ड पावर जो होते हैं, भगवान के चरण कमल के केसर से युक्त होते हैं। भागवत के श्लोक में यह शब्द आया है। और साधारण भक्त तो गले से बोलते हैं, गले से निकला हुआ शब्द केवल गले तक रहता है, परंतु हृदय से निकला हुआ शब्द व्यक्ति के हृदय में जाता है। इसलिए सुनना चाहिए। और न सुनोती, भगवान कहते हैं विनश्यति, व्यक्ति विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्वन मानी, श्लोक का भाव यही है कि यद अर्थ विशेष सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इह इस संसार में सकृत, कहते हैं बहुत सारे कर्म करता है, परंतु उसके उसे विपरीत फल ही मिलते हैं, क्योंकि अपने आप को विद्वान मानता है। और विपरीत फल इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भौतिक कार्य में लगा हुआ है। यदि हमारे कर्म के वास्तविक फल चाहिए और यदि सुखी होना है तो शास्त्र में अनेक जगह पर लिखा है कि यदि हमें हमारी इच्छा को पूर्ण भी करना है तो हमें आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। भौतिक इच्छा भी आध्यात्मिक कार्य से पूर्ण होती है। भौतिक कार्य से न तो भौतिक इच्छा पूर्ण होती है, न तो आध्यात्मिक इच्छा। यदि भौतिक इच्छा को भी पूर्ण करना है तो आध्यात्मिक कार्य करने होंगे। बाहर बोर्ड मारा है कि होली नेम वीक चल रहा है, तो नाम की महिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां नाम की महिमा आ ही रही है। यहां पर लिखा गया है कि विषय सुख प्राप्त करने के लिए यदि हम भौतिक कार्य करते हैं तो विषय सुख भी नहीं मिलते, परंतु भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए यदि आध्यात्मिक कर्म करते हैं तो सात्व तंत्र में लिखा गया है सत्व शुद्धि कर्म नाम। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो सत्व शुद्धि मन हृदय आत्मा पवित्र हो जाती। नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं ऐसे मुमुक्षु को मुक्ति मिलती है। और कामी नाम सर्व कामदम, और जो कामी होते हैं, विषय सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, यदि भगवान का नाम लेते हैं तो भौतिक सुख भी मिलता है। यद्यपि भगवान के नाम का यह वास्तविक फल नहीं है, यह आनुषंगिक फल है। वास्तव में भगवान के नाम का फल तो उनके चरणों में प्रेम उत्पन्न करना है। ना हम वेदे न तपसा न इजया न अपि तीर्थत। एक ब्राह्मण ने, एक व्यक्ति ने भगवान को पूछा, प्रभु आप किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हो, आपको प्रसन्न करने का उपाय क्या है, क्या आप वेदों के मंत्र से प्रसन्न होते हो? तब भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, ना हम वेदे, मैं वेदों के मंत्र से प्रसन्न नहीं होता हूं। तो क्या तपस्या से प्रसन्न होते हो? न तपसा, तपस्या से भी नहीं। तो क्या आरती पूजा से? न इजिया न अपि तीर्थाटनम, न तो मैं तीर्थाटन न इजिया से प्रसन्न होता हूं। संतुष्टयामि द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं संतुष्ट होता हूं एकमात्र यथा नामना प्रकीर्तिनांद, मैं केवल मेरे नाम के कीर्तन से संकीर्तन से प्रसन्न होता हूं, संतुष्ट होता हूं। तो भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जप करना, यही जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। जप का अर्थ क्या होता है? आज ही मैं पढ़ रहा था जप का अर्थ। कहते हैं जकारो जन्म विच्छेद, जप में दोष अक्षर है, टू लेटर, ज और प। ज का अर्थ क्या होता है? कहते हैं जकारो जन्म विच्छेद, ये जो हम जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेना पुनरपि जन्मम जठरे शयनम, ज का अर्थ होता है जन्म को विच्छेद करना, जो जन्म नष्ट कर देता है। जकारो जन्म विच्छेद पकार पाप नाशन, और जपा में जो प शब्द है, प का अर्थ होता है पाप का नाश करना। जकारो जन्म विच्छेद पकारो पाप नाशन, तस्मात जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशन। तस्मात, इसलिए हम सबको हरिनाम का जप करना चाहिए, जिससे पुनः पुनः जन्म और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और भी नाम की महिमा बताते हुए रूप गोस्वामी भागवत के या भक्तेश्वर सिंधु की टीका में लिखते हैं कि ननु द्वा त्रिशतम सेवा अपराधा नामना विनश्ये यु नाम अपराधा। यदि सेवा अपराध हमसे होता है, सेवा अपराध यदि हमसे हो गया, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के नाम का जप करने से हम सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि वैष्णव अपराध हो गया तो? कहते हैं वैष्णव अपराध से भगवान भी हमें मुक्त नहीं करा सकते हैं। हरि रुष्टो गुरु यात्रा, गुरु रुष्टे न कश्चन। कहते हैं हरि यदि रुठ जाए तो गुरु और वैष्णव उसे मना लेते हैं, परंतु गुरु यदि रुठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकते हैं। प्रसंग भागवत के नवम स्कंद के प्रथम अध्याय, तृतीय अध्याय, दुर्वासा और अम्बरीश महाराज। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, मान दिया अहम भक्त पराधीन, हे दुर्वासा मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, तुमने जिसका अपराध किया है वही क्षमा कर सकते हैं। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं वैष्णव अपराध जैसा भी महान अपराध हो गया, भीषण अपराध हो गया, फिर भी साधु निंदा दयो दशकेन ते अपि नाम एव इति आह। यदि वैष्णव अपराध हो गया तो भगवान के नाम का कीर्तन करने से वैष्णव अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो होते ही रहते हैं रात दिन, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। मुक्तिदत्त उपनिषद में कहा गया है दुराचारो वा अपि मम नाम भजतान कम। कहते हैं दुराचारी कितना भी चांडाल भी, सुकर और कुत्ते को खाने वाला भी यदि भगवान का नाम लेता है, सालोक्य मुक्ति कम आपनोति नतु लोकांतरादिकम, वे भी भगवान के धाम को प्राप्त करते। वैसे तो नाम की महिमा कम से कम 50 श्लोकों में मैं लाया था, समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि भगवान के नाम में 15 शक्ति है, नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में भगवान की सभी शक्ति निहित कर दी गई है, परंतु कौन सी शक्ति? तो एक दिन मैं पढ़ रहा था तो पढ़ने में यह बात आई, मैंने नोट कर लिया। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, परंतु मुख्य 15 शक्ति है। कौन सी? कहते हैं सबसे पहले भगवान के नाम में पहली शक्ति भुवन पावनी। भगवान का नाम लेते हैं तो यह हम ही नहीं, हमारा घर ही नहीं, यह देश ही नहीं, यह सारा भूमंडल पवित्र हो जाता है। भुवन पावनी यह एक शक्ति का नाम है, भगवान के नाम में भुवन पावनी शक्ति। दूसरी शक्ति कहते हैं सर्व व्याधि विनाशिनी, सभी प्रकार की व्याधि, व्याधि माने उपाधि चिंता, भगवान के नाम में सभी उपाधि चिंता व्याधि नष्ट करने की शक्ति है। तीसरी शक्ति सर्व दुख हारिणी, भगवान के नाम में सभी प्रकार के दुख को हरने की शक्ति। चौथी शक्ति कली काल भुजंग भयनाशिनी, कली काल इस कलयुग में काल रूपी भुजंग माने का सर्प को नाश करने वाली भगवान के नाम में यह शक्ति है। चौथी पांचवी शक्ति नरक उद्धारिणी, ये भी एक शक्ति का नाम है जो नरक से व्यक्ति का उद्धार कर देती है। भगवान का नाम लेकर व्यक्ति नरक से भी बच सकता है, अजामिल इसका ज्वलन प्रमाण है। छठी शक्ति प्रारब्ध विनाशिनी, जो भगवान का नाम लेने से हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं वह नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध विनाशिनी। सातवीं शक्ति सर्व अपराध भंजनी, सभी अपराध का भंजन करने वाली शक्ति। आठवीं शक्ति कर्म संपूर्ति कारिणी, सभी कर्म को संपूर्ण करने की शक्ति। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण लोग कभी कभी यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में कभी मंत्र भूल जाते हैं, या कभी कभी समय कम होने के कारण सभी मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, परंतु अंत में भगवान के नाम का कीर्तन कर देते हैं जिससे सभी मंत्रों की पूर्ति हो जाती। तो ये आठवीं शक्ति। नौवीं शक्ति सर्व वेद तीर्थ अधिकम फलदायिनी, सभी वेद तीर्थ में जो भी फल मिलता है वह फल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। सर्वार्थ दायिनी, सभी प्रकार के अर्थ देने की शक्ति है। जगत आनंद दायिनी, जगत को आनंद देने की शक्ति भगवान के नाम में है। अगति गति दायिनी, जो अगति पे जा रहा हो उसे भी गति देने की शक्ति भगवान के नाम में है। तेरहवीं शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी, भगवान के नाम में मुक्ति देने की भी शक्ति है। चौदहवीं वैकुंठ लोक दायिनी, भगवान के नाम में वैकुंठ लोक देने की शक्ति है। और अंत में कहते हैं पंद्रहवीं शक्ति भगवत प्रीति दायिनी, जो सबसे उत्तम शक्ति है, सबसे उत्तम मार्ग, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने वाली शक्ति भगवान के नाम में है। इसलिए सदैव हमें भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा अंतिम एक आश्चर्यमय बात मैं आपको बताऊं। सौर पुराण में बहुत सारे असुर थे और असुर लोग तीन ही काम करते हैं, तीन ही चीज बोलते हैं, आहार खाओ, खाना है आहार, प्रहार मारो, इसे मारो काटो, आहार प्रहार संहार प्रलय करो। कहते हैं सौर पुराण में एक बार ये असुर लोग आहार प्रहार संहार आहार प्रहार संहार करते रहे, सब लोग वैकुंठ में चले गए। पुराण में यह श्लोक आया है, क्यों? प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि कहते हैं वो लोग भगवान का नाम ले रहे थे। आहार उसमें हर नाम है हरि, प्रहर उसमें भी हरि, संहर उसमें भी हरि। भगवान ने मान लिया कि ये मेरे नाम लेते हैं, सबको वैकुंठ में ट्रांसफर कर दिया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, आप कैसे भी लीजिए, भाव कुभाव भाव से लीजिए, प्रेम से लीजिए, आलस से लीजिए, कैसे भी लीजिए, इसका फल भगवान प्रदान कर। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
हे कृष्ण। तो 12 तारीख को यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होगा, सब भक्त लोग शनिवार इस हरिनाम में आइए मीरा रोड में। फिर 13 तारीख खारघर में होगा, 19 तारीख चौपाटी में, और 20 तारीख जुहू चौपाटी में। तो पहले दिन 12 तारीख को राधा गिरधारी मंदिर से हरिनाम निकलेगा मीरा रोड में, 13 तारीख राधा मदन मोहन जी के प्रांगण से खारघर में निकलेगा हरिनाम, 19 तारीख 19 तारीख को राधा गोपीनाथ मंदिर से गिरगांव चौपाटी से निकलेगा, और 20 तारीख राधा रास बिहारी के प्रांगण से जो चौपाटी से हरिनाम निकलेगा। तो इस वर्ल्ड होली नेम सेलिब्रेशन में सभी लोग भाग लीजिए। पुनः आपको सबको बताते हैं कि जितने भी भक्त 16 माला जप करते हैं, ये आने वाले 15 दिन 25 माला जप करेंगे, और इसका जो रिपोर्ट है वो अपने अपने काउंसलर्स को आप दीजिए, ताकि 20 तारीख को हम प्रभुपाद जी के सामने अपना संकल्प को पूरा कर पाएंगे। हरे कृष्णा।